नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराणम से पाठ षष्ठ स्कंद षोडश अध्याय श्लोक संख्या 58। लब्धेह मानुषीं योनिं ज्ञान विज्ञान संभवाम् आत्मानं यो न बुद्धेत न क्वचित् खेम आप्नुयात्। लब्धेह मानुषीं योनिं ज्ञान विज्ञान संभवाम् आत्मानं यो न बुद्धेत न क्वचित् खेममाप्नुयात्। लब्धेह मानुषीं योनिं ज्ञान विज्ञान संभवाम् आत्मानं यो न बुद्धेत न क्वचित् खेममाप्नुयात्। माताजी शब्दार्थ लब्ध्वा प्राप्त करके यह इस संसार में मनुष्य जोनिम मनुष्य की जोनी ज्ञानम वैदिक शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान विज्ञान था जीवन में उस ज्ञान का व्यवहार संभवाम संभावना आत्मानम अपना वास्तविक स्वरूप या जो भी ना नहीं बुद्धेता समझता है ना क्वचित, कभी किसी समय भी नहीं। खेमम, जीवन में सफलता आपनियात प्राप्त कर सकता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। श्रील प्रभुपाद की वैदिक ज्ञान तथा उसके व्यवहार के माध्यम से आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसा भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य के लिए विशेष रूप से संभव है। जो मनुष्य ऐसी उपयुक्त परिस्थिति में जन्म लेकर अपने आप को नहीं जान पाता, वह परम सिद्धि को प्राप्त कर सकने में अक्षम रहता है, भले ही वह स्वर्गलोक को प्राप्त क्यों न हो जाए। तात्पर्य, इस कथन की पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में मिलती है। भगवान श्री चैतन्य ने कहा है, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी विशेषतया मानव वैदिक ज्ञान तथा उसके व्यवहार के द्वारा परम साफल्य प्राप्त कर सकता है। स्वयं सिद्ध होने पर वह संपूर्ण मानव समाज के आत्म साक्षात्कार के लिए सेवा कार्य कर सकता है। परोपकार करने की यह सर्वोत्तम विधि है। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीश्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं। नमों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वति देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुंठ नाम धृक् जय देव कृपा सिंधु जय लक्ष्मी पते प्रभो। जय नीलांबुज श्याम नीलजीमुत सन्निभ जय पद्माधरी त्रिभ्याम निसेवित पदाम्बुजम। जनार्दन जगत बंधो शरणागत पालक त्वं दास 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 दासानां दासत्वं देहि मे प्रभो, दासत्वं देहि मे प्रभो। तो सर्वप्रथम में इस्कन जुहू मंदिर के श्री राधा रास बिहारी जी के दरबार में जितने भी आप भक्तवृंद मातृवृंद उपस्थित है आज के प्रातकालीन सत्र में, सभी को मैं स्वागत करता हूं। और भगवान श्री राधा रास बिहारी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को उनके कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि आज उनका आविर्भाव तिथि भी है। ऐसे सुबह अनाउंस किया गया कि आज मकर संक्रांति है, तिथि के अनुसार। और आर्ज श्री राधा रास बिहारी, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, यहाँ के निताय गौर सुंदर सबके आज जन्म तिथि है इस मंदिर में। मंदिर में तो जब हमारे इष्ट देव के जन्म तिथि है तो हम सेवक लोग तो हमारा उत्सव होना ही चाहिए। ऐसे आज मकर संक्रांति तिथि है, हम सब जानते हैं भारतवर्ष के लोग भगवान सूर्य उत्तरायण में जाते हैं, संक्रमण करते हैं उत्तर दिशा की ओर। ऐसे हम जानते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड में 24 घंटा में 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होता है, लेकिन देवलोक में देवताओं का दिन रात हमारा इस भौतिक ब्रह्मांड में 6 महीना का रात 6 महीना का दिन होता है। तो ये जो उत्तरायण होता है तो आज से देवताओं का दिन शुरू हुआ, डे टाइम आज से शुरू हुआ, 6 महीना तक चलेगा, उसको देवजान कहते हैं। तो जो दक्षिणायन है ये उनका रात है। जैसे हम लोग सब रात में सो जाते हैं और सुबह उठ करके नाना प्रकार के शुभ कार्य में लग जाते हैं, मंगल आरती आदि में शुरू करते हैं, तो देवता लोग ने आज उठ करके आज से दिन उनका शुरू होगा, 6 महीना तक आप सब कार्य करेंगे, शुभ कार्य सब करेंगे। तो आज से देवजान में देवताओं ने अपने दिन का कार्य शुभ कार्य शुरू करेंगे। तो इसलिए पूरे भारतवर्ष के लिए विशेष करके आप लोगों के लिए श्री श्री राधा रास बिहारी जी भी आज अपना प्राकट्य करके सभी का जीवन में सुख और सौहार्द लाने के लिए यहाँ मंदिर में प्रकट हुए हैं। तो आज के दिन ऐसा भी मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में मेला भी होता है, क्योंकि भागीरथ महाराज अपने पूर्व पुरुषों को, पूर्वजों को उद्धार करने के लिए बहुत भारी तपस्या करके गंगा जी को लेकर के आए और आकर के आज के तिथि में उन्होंने कपिल आश्रम के पास गंगा जब यहाँ तर्पण किए गंगा जी के जल से और उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ, तो फिर गंगा जी उनके भगीरथ के पूर्वजों को उद्धार करके सागर में प्रवेश कर गई। गंगा सागर वहीं पे है, कपिल मुनि का आश्रम है। तो आज के तिथि में गंगा जी के स्नान, गंगा जी के स्नान करने से पवित्र तो होता है तन मन, लेकिन सबसे ज्यादा पवित्र होता है भगवान के नाम स्मरण से। हम कहते हैं ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा जस स्मरेत पुंडरीकाख्यं सवायह आभ्यंतर सुचि। भगवान के नाम का, कमल लोचन श्री हरि का स्मरण मात्र से आप बाहर और अंदर किसी भी अवस्था में रहो पवित्र हो जाते हैं। तो आज इस पवित्र मकर संक्रांति तिथि देवजान की शुरुआत से, देवताओं के दिन की शुरुआत में, हमारे इष्ट देव की प्राकट्य तिथि की तिथि में, और गंगा जी के जल के द्वारा भगीरथी की पूर्वजों का आज उद्धार हुआ था और आज गंगा जी सागर में प्रवेश की। तो इतने सारे शुभ कर्म जो घटित हुआ था, तो आज के दिन भी हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी के श्री चरण में, सो सभी का जीवन भक्तिमय और शुभमय हो। हरे कृष्ण। तो भागवत के षष्ठ स्कंद के षोडश अध्याय में राजा चित्रकेतु के जो परमेश्वर से भेंट की प्रसंग है, उसमें ये जो श्लोक आज है, जो भगवान श्री शंकरषण देव ने चित्रकेतु महाराज के स्तुति से प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वचन देते हैं। भगवान लगभग 15 श्लोक चित्रकेतु महाराज को कहे, जिसमें प्रभुपाद जी ने केवल 8 श्लोक के ऊपर अनुवाद तात्पर्य लिखे हैं और बाकी 7 श्लोक तात्पर्य नहीं लिखे हैं। तो आज के जो श्लोक है इसमें भगवान शंकरषण देव कहते हैं, लब्धे हंग मानुषी जोनिंग ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानं यो न बुद्धेत न क्वचित खेमम आपनुयात। लब्ध इह मानुषिम जोनिम, यह माने इस संसार में, इस भारतवर्ष में। प्रभुपाद जी ने भी इसको लिखे हैं कि भारतवर्ष में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी कहे भारतवर्ष में, बाकी कोई वर्ष में तो ये संक्रांति फक्रांति करते कि नहीं मुझे पता नहीं, शुभ अशुभ के पता नहीं, क्योंकि सूर्य इतना प्रकाश केवल भारत वर्ष को बाकी सारे में तो जानता नहीं, शायद नहीं होता होगा जितना सूर्य के प्रकाश भारत वर्ष में है इतना अन्य कोई देश में नहीं है। ऋतु के परिवर्तन, छह ऋतु का अनुभव, सब प्रकार का यहाँ जो अनुभव है, तो इसलिए ये पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है, यहाँ पर भगवान के जितने अवतार सब यहीं आते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि भारत भूमि में जो मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं उनके उनके लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग सभी का। हम सभी भारतवर्ष में जन्मभूमि जन्म भारतवर्ष में जन्म होने के मात्र तुरंत ही हमारा ऊपर उत्तरदायित्व आ गया कि हमको अपना जीवन को सफल करना होगा और परोपकार करना होगा, ये दोनों उत्तरदायित्व है। तो इसी को भगवान शंकरसन देव चित्रकेतु महाराज को भी कहते हैं, लब्ध इहं मानुषी जोनिंग, लब्धा इह यहां प्राप्त करके, यह में प्रभुपाद जी लिखते हैं विशेषतः भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर मानुष जोनिम अन्य जोनि मनुष्य जोनि प्राप्त करके, क्योंकि पूरे संसार में भगवान ने 84 लाख प्रकार के जोनि बनाए, जड़जा नवलख्याणी स्थावरा लख्य विंशति रुद्रयो कुर्म संख्यक पशव त्रिंश लख्याणी पखिलाम पक्षी 10 लख्याणी चतुर्लख्याणी मानव, इस प्रकार 84 लाख जोनि में जो मनुष्य जोनि है ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर, ये मनुष्य देह एक ऐसा, मनुष्य शरीर में एक ऐसा सुविधा है, विशेष सुविधा भगवान ने दिए हैं जिसके द्वारा ये जो जन्म चक्र जन्म संसार बंधन से बाहर निकलने का उपाय इसी में है। बाकी किसी भी जोनि में मनुष्य जोनि छोड़कर कोई इस संसार बंधन से संसार चक्र से मुक्त नहीं हो सकते, ये सुविधा केवल दरवाजा मनुष्य जोनि में है, ये गेटवे है। इसी में आप दोबारा बंधन को प्राप्त कर सकते हैं या निकल भी सकते हैं, कि निकल नहीं सकते सीधा भगवत लोक भी जा सकते हैं, ये पूरा चौराही है मनुष्य जोनि। तो इसलिए मनुष्य जोनि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही कर्म जोनी है, बाकी कोई शरीर में कर्म नहीं किया जा सकता। किसी को कि कर्म करना हो तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके कर्म कर सकता, बाकी जितने शरीर है ऊपर से नीचे सब भोग जोनी है, चाहे सुख भोगना हो चाहे दुख भोगना हो भोग सकते हैं, कर नहीं सकते, कमाना केवल इसी मनुष्य शरीर में है। हम एक मनुष्य शरीर में इतने कर्म कर लेते हैं न जाने करोड़ों जन्म तक ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, भोगते हैं सुख दुख भोगते रहते हैं। तो ये मनुष्य शरीर इतने महत्वपूर्ण है और उनको इतना आसान से मिलता नहीं है, दुर्लभं दुर्लभं मानुषम जन्मम। क्यों दुर्लभ कहा गया? दुर्लभ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मनुष्य शरीर बहुत ही 84 लाख जोनि में केवल 4 लाख जोनि बताया गया। तो शुरुआत होता है जलसर प्राणी से, ऐसे प्रत्येक जोनि में 100-100 साल जीवन की अवधि पूरा करके पूरा विकास करते 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 आकर के मनुष्य जोनि प्राप्त करते, 80 लाख शरीर बदलते बदलते फिर मनुष्य जोनि प्राप्त होता है। अगर इसमें जिसके लिए मनुष्य जोनि मिला अगर उसको हम नहीं किए तो दोबारा फिर 80 लाख जाना पड़ेगा, इतना आसान से नहीं मिलता, इतने कोर्स कंप्लीट करने के बाद में फिर दोबारा मनुष्य जोनि मिल सकता है। लेकिन अगर मनुष्य जन्म में मनुष्य शर्म में शरीर में आप थोड़ा बहुत भक्ति भजन किए तो भगवान ये गारंटी देते हैं कि स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब थोड़ा बहुत मेरा ये भक्ति धर्म के आजन करेंगे तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा भय से बचा दूंगा। भय क्या है? ये भय है कि दोबारा मनुष्य शरीर में फिर ना मिले, फिर पता नहीं फिर 80 लाख भटकना पड़ेगा, तो दोबारा मनुष्य शरीर भगवान देते हैं, दोबारा देते हैं चांस। अगर पूरा नहीं कर पाया, पेपर क्लियर नहीं कर पाया तो एक बार और चांस देते हैं क्लियर करके आओ। प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग सब ये सेकंड चांस है, पहले एक चांस खो चुके हैं, ये सेकंड चांस है, अगर ये भी खो देंगे तो फिर गया, फिर नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए बहुत ही दुर्लभ है, लाखों लाखों वर्ष कई शरीर में जन्म मृत्यु के चक्कर में पार करते 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 फिर ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, इसलिए बहुत ही दुर्लभ है। और सारे देवता पशु पक्षी कीट पतंग असुर जितने भी योनि सब मनुष्य योनि को चाहते हैं कि वहीं जा करके वो बाहर निकल सकते हैं, तो इतने दुर्लभ है, दुर्लभम लेकिन तदपि अध्रुवम। केवल दुर्लभ भी नहीं है, उसके ऊपर क्या है, अध्रुवम है। अध्रुवम का मतलब कोई गारंटी थोड़ी है कब तक वो रहेगा, कोई गारंटी नहीं कब निकल जाए हाथ से। ये मनुष्य शरीर आज है, काल तक रहेगा या नहीं किसको पता नहीं है। जैसे हम बाजार में जाते हैं, प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर दो डेट लिखा रहता है ना, नहीं एक मैन्युफैक्चरिंग डेट एक एक्सपायरी डेट। तो हमारा ये जो शरीर है, ये प्रोडक्ट है, उसमें भी दो डेट लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट तो हम बर्थडे करके मना लेते हैं, एक्सपायरी डेट को हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो लिखा नहीं है, वो बिल्कुल प्रिंट है, पक्के उसी समय में होगा, एक्सपायर हो जाएगा। वो प्रोडक्ट में केवल इतना भी लिखा नहीं रहता, उसमें और भी लिखा रहता कि बेस्ट यूज बिफोर इतने महीना के बाद। तो हमारे शरीर में ये भी लिखा गया कि एक्सपायर तो हो जाएगा इस डेट में, लेकिन अगर बेस्ट यूज करना है तो बिफोर बुढ़ापा, क्योंकि ओल्ड एज हो जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएंगे, गवर्नमेंट भी रिजेक्ट कर देगा, प्राइवेट कंपनी भी रिजेक्ट कर देंगे, आपने सारे इंद्रिय किसी काम के लायक नहीं रहेगा, तब क्या भजन करेंगे। लेकिन हम भारतवर्ष में ये कहावत है कि भजन भजन सब करना है तब रिजेक्ट होने के बाद में, जब शरीर में कुछ काम करने के लायक नहीं रहेंगे तब भजन करेंगे, ये तो भगवान को धोखा देना है। जब हम शरीर में सबल और कुछ करने के लायक रहेंगे तब आपने इंद्रिय तृप्ति करेंगे, जब टोटली रिजेक्ट हो गए तब भगवान के पास आएंगे, भगवान अभी आप कहा है, अभी आप मेंटेन कीजिए, अभी हम आपने नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो इतने दुर्लभ है और अध्रुव है, कोई गारंटी नहीं कब निकल जाए हाथ से, तो उसको सदउपयोग करना चाहिए इस मनुष्य शरीर को। दुर्लभम अध्रुवम और अर्थदम, इतने दुर्लभ है और कब तक रहेगा कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन इस शरीर के द्वारा मनुष्य जीवन का जो सबसे श्रेष्ठ अर्थ, ये अर्थ प्राप्त कर सकते हैं, अर्थदम, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं केवल मनुष्य योनि के द्वारा, मनुष्य शरीर के द्वारा। भगवत प्राप्ति जो जीव के परम चरम लक्ष्य है, उसको और किसी शरीर से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि गुरु कृष्ण की कृपा केवल मनुष्य शरीर प्राप्त किया जा सकता है। भले दूसरे दूसरे योनि में कोई कृष्ण की कृपा प्राप्त कर ले, लेकिन गुरु की कृपा तो केवल मनुष्य शरीर के बाहर, बाकी कोई नहीं प्राप्त कर सकता। तो इतने महत्वपूर्ण है मनुष्य शरीर, तो इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं लब्धा इह मानुषी योनिम, इस मनुष्य योनि की प्राप्त करके हम केवल इंद्रिय तृप्ति में, बाकी आहार निद्रा भय मैथुन में अगर समय गवा दें, तब आत्मानं यो न बुद्धियेत, आपने आपको कभी नहीं पहचाने मैं कौन हूं, क्यों हूं, किस लिए हूं, ये अगर नहीं जान पाए तो उनका तो उद्धार कभी हो ही नहीं सकता, ये चांस निकल जाएगा हाथ से। तो इसलिए सारे शास्त्र में सारे साधु साक्षात भगवान भी बारंबार ये चेतावनी देते हैं हम लोगों को, ये केवल मनुष्य के लिए चेतावनी है, बाकी कोई पढ़ेंगे नहीं, कोई पशु पक्षी, मनुष्य के लिए भगवान भी सारे संत शास्त्र सब ये चेतावनी देते हैं कि रे मनुष्य, तू ये शरीर को इतने आसान से उसका टाइम बर्बाद मत कर, एक एक क्षण कितने महत्वपूर्ण है मनुष्य शरीर का, तो उसको अगर सही से उपयोग ना करो तो कभी भी हाथ से चला जाएगा ये चांस, फिर दुख ही दुख, फिर तो नहीं मिल सकता। तो इसलिए हम सभी के लिए सतर्क वाणी है, ये सतर्क वाणी इस श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, ये सतर्क वाणी अपने उपदेश में भी, क्योंकि इसी शरीर में हम भजन कर सकते हैं, बाकी किसी से भजन नहीं हो सकता, भजन करने के लिए और इसी के लायक मनुष्य शरीर बना है। अगर हम मनुष्य शरीर के द्वारा सुख भोगना चाहेंगे तो ये सुख भोगने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि हम जिसको सुख मानते हैं इस शरीर में, जिस कार्य के द्वारा हम सुख उपभोग करते हैं, वो बोलते हैं कि शरीर में हम सुख भोगेंगे, तो इस कार्य को हम अगर देखते हैं, इस कार्य करने के लिए प्रयास करते हैं तो डर लगता है, भोगे रोग भयम, रोग के डर लगता है, तो फिर क्यों, इतने डर डर के क्या सुख भोगेगा, क्योंकि सुख भोगने के लिए लायक ये शरीर नहीं है। अगर सुख भोगने के लिए हो तो फिर दूसरे दूसरे शरीर तो उसमें बहुत सारा छूट रखा गया है। ये शरीर केवल तपो दिव्यम पुत्र का, ये शरीर तो केवल तपस्या के लिए दिया गया है, भगवत प्राप्ति के लिए दिया गया है, साधना के लिए दिया गया है। अगर हम इस शरीर के द्वारा साधना नहीं कर पाए, भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, तब उसका दुरुपयोग हो गया। क्योंकि यह मनुष्य शरीर शास्त्र में ऐसा कहा गया है, एक ऐसे सुदृढ़ नौका, ये समग्र जो संसार है, भौतिक ब्रह्मांड है, ये एक सागर के साथ तुलना किया गया, बहुत बड़े समुद्र है। वो इस समुद्र में हम लोग सब डूब रहे हैं, मर रहे हैं। इसे मरते हुए अवस्था से बचाने के लिए हमारा सहायक के रूप में ये मनुष्य शरीर एक सुदृढ़ पोत नौका जैसा है, और उस नौका को जब हम आश्रय करेंगे तो हम समुद्र पार कर सकते हैं। केवल नौका नहीं, ये नौका के साथ गुरु कर्ण धारम, हम जो इस शरीर में गुरु कृपा प्राप्त हो सकता है, गुरु धारण कर सकते हैं, तो गुरु जी एक्सपर्ट कैप्टन है, उस नौका को चालना करके पार करवा देंगे। केवल इतना नहीं, जो शास्त्र के उपदेश, भगवान की कृपा, साधु संग, ये सब है, अनुकूल वायु, फेवरेबल विंड है, तो ये सारे सुविधा होते हुए भी अगर हम सागर को पार नहीं कर पाए, इस डूबते हुए अवस्था में इतने बड़े सुंदर पोत दिया गया आपको, सुंदर कैप्टन, एक्सपर्ट कैप्टन दिया गया आपको, अनुकूल हवा भी चल रहा है, ये सबके होते हुए भी फिर भी हम अगर उसको लेकर के हमारा जीवन को सफल नहीं कर पाए, तब तो फिर गया हाथ से। तो इसलिए हमको सभी को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। भागवत में भगवान ने वृक्ष के गुणगान करते हुए कहते हैं, एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिसु, प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। बोलते हैं कि जो देहधारी इस विशेष करके भारतवर्ष में जो मनुष्य देह प्राप्त किए हैं, उस देहधारियों का जो देह धारण करने का जो सफलता, वास्तविक सार्थकता क्या है, बोलते एतावत जन्म साफल्यम, इस जन्म के सफलता तो इस शरीरधारियों के लिए केवल इसी काम है। किसी काम में? बोलते हैं कि आपने जीवन के द्वारा, आपने प्राण के द्वारा, आपने अर्थ के द्वारा, आपने वाणी के द्वारा, प्राणेर अर्थेर बुद्धि के द्वारा, ये सभी के द्वारा केवल श्रेय आचरणम सदा, दूसरे के लिए कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, इसी में ही इस जीवन का सफलता निहित है। अगर ये काम नहीं कर पाएंगे तो भगवान कहते हैं कि तो फिर शरीर प्राप्त करना बेकार हो जाएगा, विशेष करके मनुष्य शरीर। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भी चैतन्य महाप्रभु की इस बात को यहां उदाहरण किए हैं। चैतन्य महाप्रभु जो सभी भारतवासियों के लिए ये बात आदेश दिए हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जन्म सार्थक भी करना है, परोपकार भी करना है। यहां एक कभी कभी प्रश्न मन में उठता है, तो पहले जन्म सार्थक करना पड़ेगा फिर जाकर परोपकार करेंगे? तो इसी के बहाना लेकर के कई व्यक्ति, कई भक्त लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अभी हम अपना जीवन सार्थक नहीं किए तो उपकार कैसे करेंगे, हम दूसरे का काम नहीं कर सकते क्योंकि आपने सार्थक नहीं किए। क्यों नहीं किया अगर पूछा जाएगा? तो अगर आप रोड में जाते हैं एक्सप्रेस हाईवे में, और जो हाईवे का नीति नियम है आपको पता नहीं है, रेड लाइट क्या है, ग्रीन लाइट क्या है, लेफ्ट साइड चलना है पता नहीं, आप उल्टी सीधी चले तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ कर आपको जो दंड देगा, आप बोलेंगे मुझे पता नहीं था सर, तो आपको नहीं छोड़ेगा। बोला क्यों नहीं पता किया? पता किए बने आया क्यों इसे? तो मनुष्य जोनि को प्राप्त करने मात्र हमारा ये दायित्व बनता है कि हमको पता करके क्या जीवन की सफलता, कैसे जीवन को सार्थक करना होगा उसको जानना होगा, और फिर परोपकार करना होगा। तो अगर हम केवल इसी के विचार में रह जाएं कि नहीं अभी हमारा जीवन हम समर्थ नहीं है परोपकार करने के लिए, तो जब हो जाएंगे तब करेंगे। तो इसी बात पर ऐसे दुहाई देकर कि हम बचना चाहेंगे तो बच नहीं सकते। नहीं, भगवान कहते हैं कि मैं तुझे मनुष्य शरीर दे दिया, ये बहुत है, दैट्स इट, एनफ, बहुत है। हम सभी के पास कितने शक्ति, कितना सामर्थ है कुछ भी काम करने के लिए, ये भले हमको पता चले या ना चले, लेकिन देने वाला को तो पता है ना, प्रभु को पता है कि इस जीव को मैंने ये शक्ति, इतना सामर्थ्य दिया है, इसके द्वारा ये सेवा कर सकता है। अगर हम सेवा नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं अभी मैं इतना ये हो जाऊं तब जाकर करूंगा, इतने और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तब जाकर करूंगा, ये सीख लूं तब जाकर करूंगा, ये काम नहीं चलेगा। अगर भगवान अंतर्जामी हो, देखते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ है उसी को हम उनके सेवा में लगाएंगे, तो फिर जो आवश्यकता हो देंगे, और कोई आवश्यकता हो तो दे देंगे। शास्त्र में कहते हैं कि जो भगवान की कृपा है ऐसे उसका प्रभाव है, यत कृपा तमहंग बंदे मुकं करोति वाचालं बंगुम लंघयतेम गिरिम। कोई मूक व्यक्ति भी भगवत कृपा से वाचस्पति हो जा सकता है। भगवान की कृपा से जो पंगु व्यक्ति भी पहाड़ को लंघन करके जा सकता है, इतने समर्थता आ सकता है। तो भगवान की कृपा होगा जब हम भगवान के लिए सेवा करने चाहेंगे। तो इसे एक कथा कहते हैं कि भगवान राम जब सेतुबंध बना रहे थे सागर के तट पर, तो उनके प्रोजेक्ट था ब्रिज बनाने का, तो उनके पास तो ऐसे आधुनिक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, इतने बड़े बड़े बुलडोजर, इतने सब मशीन सब कुछ था नहीं। तो उनके पास जो भी थे नल नील इंजीनियर थे, बाकी सारे बानर और भालू यही सब थे, उनके द्वारा काम करा रहे थे। वो लोग बड़े बड़े पर्वत बहुत हैवी वेट पत्थर से उठाकर ला करके राम नाम करके और समुद्र में डाल रहे थे, ब्रिज बना रहे थे। तो भगवान ने दर्शन कर रहे थे, अपने ब्रिज कंस्ट्रक्शन काम चालू था। तो एक छोटा सा जीव गिलहरी था, वो गिलहरी जानते ना आपने, चूहा जैसा होता है। तो वो देखा कि भगवान के प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है, तो बोला मुझे भी भगवान के लिए काम करना चाहिए, मुझे भी भगवान के लिए कुछ सेवा, कुछ काम करना चाहिए। तो ये नहीं सोचा कि मुझे ये काम करने के लिए मेरे पास तो कोई सामर्थ्यता नहीं है, कोई शक्ति नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं। नहीं, उन्होंने विचार किया जो भी भगवान ने मुझे शक्ति सामर्थ्य दिए हैं उसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो चल पड़ा मन में डिसाइड करके, जा करके वहां पहुंचा ऑन द स्पॉट, पहुंच कर देखा कि विराट विराट पत्थर सब बड़े बड़े शक्तिशाली वानर लोग लाते हैं, तो एक आधा किलो पत्थर भी नहीं उठा सकता बेचारा, क्या कर सकता है। तो फिर भी सोचा नहीं मैं कुछ करूंगा, तो जाकर के वो समुद्र के पानी में डूब गया, तो उनका शरीर गीला हो गया पानी से। डूब करके बाहर आया, आकर के समुद्र के जो रेत था वो रेत में लोटपोटो कर लिया, तो अपने शरीर में गीला था तो सब शरीर बालू लग गया, उसमें रेत लग गया। तो जाकर के फिर समुद्र में उस शरीर को हिलाया, झाड़ने लगा, तो कितना ग्राम, 10-20 ग्राम बालू उसमें शरीर में गया होगा, तो उसको जाकर समुद्र में डालने लगा। फिर डूबा, फिर आकर के रेत में लोटा, फिर जाकर शरीर में झाड़ा, ऐसे क्योंकि को उठा नहीं सकता, तो अपने शरीर को समुद्र के पानी से गीला करके समुद्र के किनारे के बालू पर अपने शरीर को लेट करके उसमें जो बालू लगता था उसको जाकर पानी में झाड़ता था। वो बोलता था इसमें मैंने भगवान के ब्रिज बनाने का काम में मैंने विभाग ले रहा हूं। तो बड़े बड़े वानर लोग आते थे, वो देखे कि क्या ये कर रहा है, किसी का पैर के नीचे आ जाए तो चटनी हो जाएगा, तो उसको हटा दिए, हट यहां से। तो हटा दिए तो भगवान ने देख रहे थे कंस्ट्रक्शन, भगवान ने तुरंत उठ के खड़ा हो गए, आ गए यहां, बोले क्यों ऐसा उनको हटा दिया, हाँ भगवान ये क्या कर रहा है, ये हाई रोड के ऊपर आ जाते मर जाएगा कभी। बोले क्यों मर जाएगा, आप भी काम करे, वो भी काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है। थोड़ा सोच सकते हैं हम लोग कि कोई समुद्र के बाली को लेकर के समुद्र को बांध सकता है क्या, कोई और कहीं से नहीं, समुद्र के किनारे का जो रेत है उसी को उठा करके समुद्र में फेंके, और वो भी आधा किलो उठा कर फेंक दो तो चलेगा, उसके शरीर में कितना बाली आएगा, 10-20 ग्राम भी आएगा, उसको लेकर डालेगा, अगर करोड़ों 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 जन्म तक वो इसे करते रहे तो आधा एक सेंटीमीटर भी बंद नहीं बनेगा समुद्र में, तो क्यों ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना? नहीं तो फिर भी उन्होंने कर रहा था, लेकिन भगवान ने उस सेवा को स्वीकार किए, और जो वानर ने उसको नेग्लेक्ट किया उसको उन्होंने बोले नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मैंने जितना शक्ति सामर्थ्य दिया है आप उनके हिसाब से पत्थर लाकर डाल रहे हैं, उनको मैंने जितना शक्ति सामर्थ्य दिया है वो उनको पूरा लगा रहा है, आप तो पूरा भी नहीं लगा रहे, वो पूरा शरीर को लगा रहा है, पूरा शरीर को पानी में डुबा करा के लोड करके डाल रहे हैं, आप तो केवल हाथ थोड़ा बहुत शक्ति लगा रहे हैं, तो इसलिए आपसे ज्यादा सेवा वो कर रहा है। वो हाथ से देखने लगा वो सेवा कर रहा है ज्यादा, वो सेवा करके ब्रिज बना सकता है, नहीं ब्रिज बना सकता नहीं सकता वो बात हम नहीं कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं मैं सारे जीव को कर्म करने के लिए अधिकार दिया हूं, फल में अधिकार आप लोग का नहीं है, फल तो मेरा हाथ में है, आपको ब्रिज के बनाने के लिए काम लगाना करना चाहिए, ब्रिज कंप्लीट होगा नहीं होगा वो आपको सोचने के लिए कौन है, मैं बैठा हूं ना इसके लिए, तो वो अपना काम कर रहा है, आप वो क्या ब्रिज बना सकता है, आप क्या बना सकता है, कोई नहीं बना सकते हैं, बनाने वाले तो प्रभु हैं, वो तो हमारे कल्याण के लिए चांस देते हैं कि हमको सेवा कर लें। तो भगवान ने उसको उठा करके, उस निगलेट किया गया था वन, उसको उठा करके आपने हाथ में उनको आशीर्वाद दिए, ऐसे कहते हैं कि उनका पीठ पर जो तीन रेखा है ये भगवान की हस्त कमले की श्री हस्त की चिन्ह है, उनको आशीर्वाद दिए थे। तो इससे हम देखते हैं कि भले हमारा कुछ भी शक्ति कुछ भी सामर्थ्य ना हो, किसी प्रकार के लायकत ना हो, लेकिन जो भी थोड़े बहुत है अगर इसके द्वारा हम भगवान के सेवा करने के लिए तैयार हो जाएं, वही सबसे बड़ा है। केवल भगवान की गुरु कृष्ण की सेवा करने के लिए मन में एक संकल्प ले आ जाए, वही जीवन की सफलता है, यही सफलता है, और उसी के द्वारा कार्य करो तो परोपकार होगा। हम कहते नहीं हम इतने सारे ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे तब जा करके जन्म सार्थक होगा, उसके बाद में परोपकार करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो फिर तो किसी का भी जन्म सार्थक नहीं होता, कभी नहीं हो सकता, हम सभी का अंदर कमी है, चाहे कितने भी कितने जन्म प्रयास कर ले हम कमी से बच नहीं सकते, है ना? नहीं तो इसको कहने का मतलब है हम भगवान के शरण में जाएं, प्रभु को कहेंगे प्रभु हम आपका है और आप हमारा है, यही है हमारा संबंध, और हमारे पास जो भी आपने दिए हैं शक्ति सामर्थ्य इसको द्वारा मैं आपका सेवा करूंगा, बस इतना ही जीवन का सफलता है, अपना कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, अब दूसरे के काम में लग जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। कोई कोई लोग सोचते हैं कि नहीं बड़े बड़े धाम में अब आप लोग क्या प्रचार करते हैं, ये प्रचार में क्या होता, प्रचार करने की क्या शक्ति रखा है, ये मचा रखे आपने, जा करके भजन करो इधर उधर जा करके, इतने साल तक लंबा इतने निष्ठा भजन करो, इतने माला करो, इतने त्याग तपस्या करो, तब जाकर कहीं तपस्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग कोई कोई बड़े बड़े महापुरुष शुद्धिकरण के लिए लोगों को शिक्षा देने के लिए कभी कभी ऐसा आचरण करते हैं, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद और कई ऐसे हैं, लेकिन करके भी इतने बड़े साधन को करने के बाद भी तुरंत उन्हें प्रचार के कार्य में आ जाते हैं, लेकिन जो प्रचार प्रसार करते नहीं लेकिन दुआही दे करके केवल इसी में पड़े रहते हैं। एक बात चैतन्य महाप्रभु के लीला में आता है, विचार करने के लायक है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीला में जो हरिदास ठाकुर थे उनको हरि नाम के आचार्य की पोस्ट में पोस्ट दिए। उनको हरिदास ठाकुर ने जितने नाम जप करते थे, जिस प्रकार जप करते थे, हम कभी स्वप्न में सोच भी सकते हैं हम कभी कर सकते हैं ऐसा? संभव नहीं है। 192 राउंड्स एवरी डे करते थे उन्होंने। हम अगर 16 माला करते हैं तो कितने समय लगता है, अगर 64 राउंड करेंगे तो पूरा 8 घंटा 9 घंटा लग जाएगा, अगर 3 बार करेंगे 192 राउंड करेंगे तो 24 घंटा लग जाएगा, तो फिर खाना पीना सोना बाकी सब काम कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर के कब करते थे सब, कब खाते थे सोते थे, कब क्या करते थे पता नहीं, उनके पास टाइम बिल्कुल ही नहीं होता होगा। इतने 3 लाख माला लेने का जो शपथ ले रखे थे उनको टाइम मिलेगा कहां से 24 घंटे में। लेकिन हम देखते हैं इतने निष्ठ भजनानंदी महात्मा हरिदास ठाकुर को भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार बुला करके बोले, सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास, आमार आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश। बोले ये नहीं चलेगा बैठकर भजन करना, जाओ प्रचार में जाना पड़ेगा आपको, यू हैव टू गो आउट, सब घर घर में जा करके मेरे आदेश को बताओ। प्रचार करने के लिए आदेश दिए। अगर हरिदास ठाकुर जैसे भजनानंदी महात्मा जो 24 घंटे तक भजन में रहते थे, वो ठाकुर जी को बोल सकते थे, प्रभु मेरा टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम सर, मैं इतना सारे दिन करता हूं भजन, मेरा टाइम कहां में जाऊंगा। महाप्रभु बोले नहीं हो सकता, हम नहीं सुनने वाले, जाओ। उनको जाना ही पड़ा। अब जाकर के थोड़े बहुत घूमकर आ जाए फिर भजन में बैठ जाए, ऐसा नहीं है। उनको भेजे किसके साथ में, महा पागल अवधूत चुड़ामणि नित्यानंद प्रभु के साथ में, और वो उनको ले करके चले गए जगह माधा के पास। लो इतने परेशानी में डाल दिए जा करके, जो सबसे ज्यादा भजन करने वाले नाम के आचार्य है वो अगर प्रचार करने जाते हैं सबसे बड़ा तकलीफ उनको प्राप्त होता है। हमको तो ऐसा कष्ट नहीं मिल रहा है प्रचार में, जगह माधा जैसा मर्डरर हमको नहीं मिले अभी तक, तो उनको ये सामना कर मिल गए उनको, और वो भागे दौड़ करके आए से पहला चांस में, सेकंड चांस फिर लेकर गए। तो ऐसा नहीं है कि जो भजन करते हैं वो केवल भजन करते रहें, वो बोलेंगे कि नहीं अभी हमारा सामर्थ्य नहीं हुआ, हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। नहीं, भजन के साथ साथ प्रचार करना बहुत ही आवश्यकता है, वो इतने इंपोर्टेंट है, तभी तो हरिदास ठाकुर को भेजे उन्होंने। और प्रचार करने में हमको केवल सुख सुविधा प्राप्त होगा ये भी नहीं है, बहुत बहुत कठिनाई सामना करना पड़ सकता है। और अगर कठिनाई सामना करने के लिए हम तैयार हो जाएं, प्रचार करने के लिए सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, उसका मतलब नहीं प्रचार करेंगे भजन नहीं करेंगे, ना, भजन भी करना होगा और प्रचार भी करना होगा। दोनों के लिए हम अगर मन में संकल्प लें तो ही है जीवन की सफलता और यही परोपकार, और इसी में भगवान सहायता करते हैं, इसी में भगवान सहायता करते हैं। तो भगवान ने चित्रकेतु महाराज को जिन्होंने अभी नारद जी से दीक्षा प्राप्त करके उनसे मंत्र प्राप्त करके भजन कर रहे हैं, तो उनके भजन से प्रसन्न होकर के भगवान शंकरषण देव उनके सामने प्रकट हुए हैं, उनको दर्शन दिए, दर्शन दे करके उनके उपदेश दे रहे हैं कि वास्तविक मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे श्लोक में बोलते बोलते आगे चलकर बोलते, एतावान एव मनुजैर जोग नैपुण्य बुद्धि भी, जो पुरुष जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे परम पुरुष तथा जीवात्मा की भली भांति अवलोकन करें, जो अंश तथा पूर्ण होने के कारण गुण रूप से एक ही है, जीवन की यही सबसे बड़ी समझ है, इससे बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। तो भगवान ने स्वयं ये बात कहते हैं कि कोई मनुष्य जन्म प्राप्त किया और अगर वो अपने आप को और भगवान को नहीं जान पाया, केवल खा पी करके ऐसे तथा कथित सुख से अपने जीवन गंवा दिया, तो बहुत बड़े लॉस हो गया। तो मनुष्य जीवन का वास्तविक उपयोगिता इसमें कहते हैं, एतावन एव मनुजैर जोग नैपुण्य बुद्धि भी, जो पुरुष जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर जीवन के परम पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं वो तो केवल मनुष्य जोनि में ही हो सकता है। और मनुष्य जीवन जोनि में भी जो परम पुरुषार्थ है वो क्या है, ना अपने आप को समझना और भगवान को समझना और भगवान के सेवा में लगना। अगर ये हम नहीं कर पाए तो ये चांस गया। यही सबसे बड़ा प्राप्ति है, जीवन की सफलता है। और इस बात को संसार में प्राय लोग भूल चुके हैं, और इसी भूलने के कारण ही हम लोग यहां कष्ट पा रहे हैं। तो जो सारे संसार के अनंत कोटि जीव जो दुख में पड़ करके कष्ट भोग रहे हैं, उनके लिए कृपा करके कोई उनका उपकार करना चाहेगा तो क्या उपकार कर सकता जाकर का? एक व्यक्ति को अरे भूखा है तो कोई उनको आवश्यकता को पूरा करने चाहेंगे? सारे संसार में लोग पढ़े कितने उपकार कर सकते हैं। तो इसलिए सारे संसार के जो जड़ है भगवान है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। जगत के हित करना चाहते हो तो कृष्ण के हित करो, सारे जगत के हित हो जाएगा। तो जो मनुष्य सारे जनता को इस बात को बताने जाएगा कि देखो इसी कारण से तू दुख भोग रहा है, यही कारण है, अगर तू अपने आप को जानने के लिए प्रयास करो और भगवान की सेवा में अपने आप को लगाओ तो निश्चित रूप से आप सुखी हो जाओगे। इस बात को लोगों को बता देना ही सबसे बड़ी परोपकार है। इसी बात को भी भगवान शंकरषण देव चित्रकेतु महाराज को इधर कहते हैं कि मनुष्य शरीर का यही परम अर्थ है और वही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही हम लोग को प्रयास करना चाहिए। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं अपने उद्देश्य में, अपने क्लासमेट को सामने बता रहे थे, बोलते हैं कि जो इंद्रिय के सुख प्राप्त होता है हम लोग को तथा कथित देही नाम जो यथा इंद्रियकम दैत्या, जो इंद्रिय सुख हम शरीर से भोग करते हैं ये सुख तो सर्वत्र लभ्यते दैवात, ओ भगवान की अरेंजमेंट के द्वारा सर्वत्र सब जगह में सब शरीर में उपलब्ध है। चीटी से लेकर ब्रह्मा तक अपना अपना शरीर के अनुसार सुख प्राप्त करते हैं, और ये सुख आप नहीं करते हैं, सुख व्यवस्था रखा गया है आपके लिए, आपके लिए पहले से फिक्स करके रखा गया आप कितने सुख मिलेगा आपको कितने दुख मिलेगा, तो इसके लिए क्यों आप प्रयास करते हैं। जो आपके लिए ऑलरेडी रखा गया है उसके लिए फिर इतना परिश्रम क्यों करते हैं। सर्वत्र लभ्यते दैवात, दैव के हिसाब से मिल रहा है। तो कहते हैं कि तो फिर उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं, प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा। तो प्रहलाद महाराज करते हैं कहते हैं तो हम लोग कभी दुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं क्या कि हमारा पैर टूट जाए, हम कच बुखार हो जाए, कोई प्रकार और दुख आ जाए, कोई प्रयास करते हैं? एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। सारे मांगते हैं हम सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, इसी के लिए मांग प्रयास सब करते हैं। लेकिन जैसे जत्न किए बिना यथा दुखम या जत्नतः, जैसे दुख भी बिना जत्न किए प्राप्त हो जाता है ऐसे सुख भी बिना जत्न किए ही प्राप्त होगा, क्योंकि कोटा फिक्स है पहले से, जितना दुख मिलेगा जैसे बिना मांगे बिना प्रयास के प्राप्त होता है ऐसे जितना सुख मिलेगा वो बिना प्रयास के बिना जत्न के मिलेगा, तो उसके लिए क्यों प्रयास करते। इसलिए कहते तत् प्रयास न कर्तव्यम यथा आयु व्यय परम, इसलिए ऐसा प्रकार प्रयास मत करो जिसमें आपका ये दुर्लभ मनुष्य शरीर का अपव्यय हो जाए, बेकार हो जाए, तो उसको सदुपयोग करने के लिए प्रयास करना चाहिए। न तथा बिंदते खेमं मुकुंद चरणाम्बुजम, इस श्लोक में खेम का शब्द आया। खेम माने वास्तविक जीवन के लक्ष्य, जो वास्तविक जीवन के चरम लक्ष्य है वो है भगवान की सेवा, वो तो इस प्रयास से नहीं प्राप्त होगा, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसी के लिए ही ये शरीर मिला है, इसी के लिए कर्मेंद्रिय मिला है, ना कि इसके लिए मिला है। क्योंकि तथा कथित जितने प्रकार के शारीरिक सुख है ये सब दैव्य के द्वारा अपने भाग्य के द्वारा निर्धारित है, केवल भागवत कर्म भक्ति योग वो भाग्य के अंदर नहीं है, वो कर्म में नहीं है, भाग्य में नहीं है, आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, तो यही केवल करने के लिए ही ये चांस दिया गया मनुष्य शरीर में। जो करने से ही प्राप्त होता है, जो नहीं करने से प्राप्त नहीं हो सकता है, यही सबसे बड़े महत्वपूर्ण कार्य है, जो भगवत भजन है, भगवत भक्ति, यही इसी को करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, इसमें इंद्रिय दिया गया है, अगर इसको हम जान पाते हैं वो करते हैं तो इसी के द्वारा मनुष्य जीवन सफल होगा, और जो नहीं करते हैं उनको बताना होगा कि आप इसे कीजिए, तो इसको करना और दूसरे को बताना यही भगवान के आदेश है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण कर रहे थे तो जो कुर्म ब्राह्मण के वहां रहे, और गोस्वामी बताते हैं कविराज गोस्वामी की प्रत्येक दिन महाप्रभु किसी ना किसी ब्राह्मण का घर में रुकते थे प्रसाद के लिए, सभी लोग उनको ऐसे ही प्रार्थना करते थे, कृपा करो प्रभु मोरे जाऊं तुम्हार संगे, सहित न पारी मुई विषय तरंगे, बोले प्रभु अब कृपा करके मुझे आपके साथ में जाने के लिए परमिशन दीजिए, मैं ये संसार दुख से और नहीं सहन कर सकता हूं, आपके साथ जाना चाहता हूं छोड़ करके प्लीज। तो महाप्रभु तुरंत उनका इस प्रार्थना को ठुकरा देते। मुंह में हाथ, बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे कभी ना, ऐसा बात मत करो। अरे हम बोलते हैं कि महाप्रभु शिक्षा दिए सब छोड़ छाड़ करके आ जाओ, लेकिन महाप्रभु यहां कहते नहीं मत छोड़ के आओ, आप घर में रहो, घर में रह करके मेरे आदेश को पालन करो। क्या आदेश आपके? घरे रही निरंतर कृष्ण नाम लैवा, आप हमेशा कृष्ण के भजन करो, कृष्ण नाम रहो, घर में रहो, जहां रहो रह के कृष्ण भजन करो, और क्या करो ना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाए गुरु हया तारा ऐदेश। ये डायरेक्ट ऑर्डर महाप्रभु ने दिए, अगर इस बात को करेंगे घर में रहकर भी जिस भी स्थान में जहां है इसे रह करके आपने साधन भजन करेंगे, कृष्ण के भजन निरंतर करेंगे, और जिसको भी आप भेटेंगे मिलेंगे, जो भी प्रचार करेंगे कृष्ण के उपदेश करेंगे, तो भगवान क्या उनके कोई अगर ये दो काम करता है, स्वयं भजन करता है दूसरे को भजन करने के लिए उपदेश देता है, भगवान कहते हैं कि कभु ना बाधिवे तुमार विषय तरंग पुनरपि यही ठहरे पाबू मरा संग। फिर अगर दो काम करोगे तो कभी तुझे संसारिक जो बाधा है आपके भजन में बाधा नहीं दे सकता, आपको भी परेशानी नहीं कर सकता। और दोबारा आशीर्वचन क्या दिए कि यहीं पे आपके घर में आप मुझे प्राप्त होंगे, आपने पुनरपि यही ठहरे पाबू मोर संग। ये चैतन्य महाप्रभु के वाणी केवल एक व्यक्ति को नहीं, कबीराज गोस्वामी कहते हैं सब जगह पर यही सेम उपदेश महाप्रभु दिए, सभी को यही बात कहे। यद्यपि हम देखते हैं कि महाप्रभु का मिशन था वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, लेकिन फिर भी यही देते हैं कि किसी भी स्थान में आप रहो, इसी भी स्थान में रह करके परम वैराग्य है अनासक्त होकर कृष्ण के भजन करना और दूसरे को कृष्ण भजन के उपदेश देना, यही दोनों ही क्रिया है जो भगवान के डायरेक्ट ऑर्डर है। इस दोनों को करना इस मनुष्य शरीर के द्वारा संभव है, प्रत्येक मनुष्य को ही करना है, यही उत्तरदायित्व है। अगर इसको कोई करते हैं किसी भी परिस्थिति में रह करके, किसी भी स्थान में रह करके, तो महाप्रभु का सीधा उनके लिए आशीर्वचन है, आशीर्वाद है कि उनको ये संसार की ज्वाला बाधित नहीं कर सकता और भगवत प्राप्ति जहां रहेंगे वहीं पर उनको हो सकता। पुनरपि यही ठहरे पाव मोर संग, जहां हो गए वहीं प्राप्त हो जाएंगे भगवान, भगवान सर्वत्र प्राप्त हो सकते। तो ये केवल उसी के लिए नहीं था, सभी मनुष्य के लिए, प्रत्येक शरीरधारी के लिए भगवान की ये आदेश है और उपदेश है, विशेष करके हम लोगों के लिए है जो हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि हम भगवान के हैं होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग को बड़ी सतर्कता से, बड़ी सावधानी से उसको पालन करना चाहिए, यही हमारे कर्तव्य है। तो ऐसा संकल्प, शुभ संकल्प आज के शुभ दिन में राधा रास बिहारी जी के जन्मतिथि के दिन पर हम लोग शपथ लेकर के संकल्प करना चाहिए ताकि हमारा जीवन आगे चल के सफल हो जाए। हरे कृष्ण। कोई कमेंट है प्रभु जी? ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की समवेत भक्त वृंद की बोलना है। बोलो बोलो ना, आपका आवाज तो माइक से बढ़कर है।
हरे कृष्णा, बहुत अच्छा है प्रवचन। लेकिन ऐसे जो बोले कि सबको जैसे विचार, ऐसे विचार कैसे आएगा हमको कि 24 आवर्स ऐसे विचार होना चाहिए ना, कि हमेशा ऐसे विचार रहेगा तो मन होगा करने को ना, कि जो प्रचार करना, सेवा करना, ये विचार कैसे हम अपना हृदय में हमेशा रेडी कर सकते हैं।
अच्छा, हरादास प्रभु पूछ रहे हैं ऐसे भाव कैसे हमको प्राप्त होगा कि हमेशा इस प्रकार करें। ऐसे भाव प्राप्त होने का एक ही उपाय है, जिसके पास ऐसे भाव है उनके सेवा करो, उनके संग करो, तो आपको मिल जाएगा। हरे कृष्ण। इसकन एक ही सोसाइटी है जिसमें ही भाव दिया जाता है, इसमें आने से मिल जाएगा आपको अनायास। हरे कृष्ण।